परिशिष्ट 20। पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था, न्यू ऑर्डर इन ईस्ट एशिया तथा विशाल पूर्वी एशिया सह समृद्धि क्षेत्र ग्रेट ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर। पृष्ठ संख्या 210। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व दशक में जापान पूर्वी साम्राज्यवाद व्यवस्था और उसके संबंधित मुद्दों को चुनौती देने में स्वयं को पर्याप्त सक्षम अनुभव करने लगे। जापान के प्रभावशाली नेतृत्व ने प्रचार करना आरंभ कर दिया था कि जापान का यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दायित्व था कि वह मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, जो यूरोपीय साम्राज्यवादियों के नियंत्रण में थी, रौंद कर नए प्रकार के नैतिक एवं राजनैतिक सिद्धांतों पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए रास्ता तैयार करें। उदाहरणतया कीता इक्की ने जापान को पुकार दी कि एशियाई संगठन के पवित्र ध्वज को फहराए और बने विश्व संघ का नेतृत्व संभाले। कुआंगतुंग सेना द्वारा मंचूरिया पर कब्जा, जापान द्वारा राष्ट्रसंघ का त्याग, लंदन सम्मेलन में नौसैनिक शस्त्रों पर रोक लगाने की सहमति में दिक्कत तथा बार बार एशियाइयों के लिए एशिया जैसे नारों पर जोर, यह सब जापानी नेतृत्व की उस समय की चित्त वृत्ति को प्रदर्शित करते थे। एशियाई भाईचारा जैसी कल्पना को पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था और विशाल पूर्वी एशिया सह समृद्धि क्षेत्र जैसे विचारों से और भी शक्ति मिली। वैसे तो इन दोनों धारणाओं का प्रयोग जापान ने अपनी पहले से चली आ रही विस्तारवादी नीति का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया, लेकिन उन धारणाओं में यह व्यापक विचार भी अच्छी प्रकार से प्रदर्शित था कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा 19वीं शताब्दी में स्थापित साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत हो रहा था और विश्व प्रणाली आर्थिक तौर पर स्वयं परिपूर्ण तथा राजनैतिक तौर पर स्वतंत्र विशाल राष्ट्र क्षेत्रीय गुटों में पुनः गठित होगी। एशिया में नई व्यवस्था, यह कोनोए फुमिमारो की सरकार द्वारा 3 नवंबर 1938 को घोषित किया गया एशियाई राजनीतिक व्यवस्था का एक विचार था। वैसे तो 16 महीने से चले आ रहे चीन जापान युद्ध 1937-45 में जापान ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर ली थी, लेकिन जापान के कुछ दूरदर्शी नेता तथा सैनिक डर रहे थे क्योंकि जापान इस झगड़े में अस्थायी रूप में फंसता जा रहा था तथा युद्ध गतिरोध की स्थिति में घुसता जा रहा था। यदि ऐसे युद्ध में चीनी जापान को नहीं हरा सकते थे तो दूसरी ओर ऐसा भी लग रहा था कि जापान भी इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। ऐसा करने से जापान कमजोर हो सकता था, जिसके कारण जापानी साम्राज्य पर रूस या पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां दबाव डाल सकती थी। इसलिए जापानी सरकार ने चीन की तरफ अपना रुख कुछ बदल लिया ताकि चीनियों की विरोध भावना में कमी आ जाए या फिर चीनी सहयोग आंदोलन आरंभ हो जाए। इस संघर्ष के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री कोनोए ने नई व्यवस्था का सुझाव दिया, जो पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इसका उद्देश्य जापान, मांचुकुओ और अधिकृत चीन में एक संयुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाकर जापान के नेतृत्व में स्थिरता एवं समन्वय स्थापित करना था। कोनोए ने चीन को भारी आश्वासन देते हुए कहा कि जापान चीन की भूमि हथियाने या वहां विशेषाधिकार प्राप्त करने की बजाय उसके साथ मिलकर साम्यवाद तथा पाश्चात्यवाद शक्तियों के साम्राज्यवादी इरादों के विरुद्ध टक्कर लेना चाहता था। कोनोए ने कहा, चीन और जापान के इस आपसी सहयोग से ही पूर्वी एशिया की नई व्यवस्था का जन्म होगा और उसमें चीन जापान बराबर के हिस्सेदार होंगे। चियांग चियेसरा जापान की चाल को समझता था और उसने यह जानते हुए कि सहयोग में जापान चीन को वास्तव में कभी भी बराबर का भागीदार नहीं बनाएगा, इस प्रस्तावना को मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन चियांग के लंबे समय से चले आ रहे विरोधी वांग चिंगवेई जापान से जा मिले और उन्होंने दिसंबर 1938 में जापान के साथ नई व्यवस्था कायम करने के लिए बातचीत करनी आरंभ कर दी। इस वार्तालाप के फलस्वरूप, जो लंबे समय तक चलती रही, मार्च 1940 में प्रजातांत्रिक चीन की पुनः गठित राष्ट्रीय सरकार रीऑर्गेनाइज्ड नेशनल गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। जापान द्वारा रचित नई व्यवस्था की वास्तविकता जल्दी ही प्रकट हो गई, जब जापान ने चीन में मौजूद विदेशी व्यापार को नष्ट करना आरंभ कर दिया। इस नीति के द्वारा जापान मुख्य तौर पर न केवल चीन में अपना आर्थिक एकाधिकार स्थापित करना चाहता था, बल्कि सैनिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रवादियों को विदेशी मदद से वंचित करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जापान ने विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी और विदेशियों की तलाशी लेने शुरू कर दी, ताकि चीनी यह समझने लगे कि पश्चिमी उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है और जापान ही एशिया का मुक्तिदाता है। पृष्ठ संख्या 212। नई व्यवस्था कई प्रकार के दोषों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी यह कोई निराधार विचारधारा नहीं थी। यह चीन और जापान की उस पुरानी व्यवस्था के प्रति घृणा दर्शाती थी, जो पाश्चात्य साम्राज्यवादियों द्वारा अफीम युद्ध 1839 से 42 में चीन की लज्जाजनक पराजय के बाद की शताब्दी के दौरान कायम की गई थी। इस काल में पाश्चात्य शक्तियों ने अपने जंगी बेड़ों और नौसैनिकों की सहायता से चीन में विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जिन पर असमान संधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। फलस्वरूप चीन को पाश्चात्य राष्ट्रवादियों का विधिवत उपनिवेश तो भले नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अनेक जापानियों का विचार था कि चीन का शोषण बिल्कुल एक उपनिवेश की तरह ही हो रहा था। ऐसा न केवल चीन के पिछड़ेपन और अव्यवस्था के कारण हुआ, बल्कि पुरानी कूटनीति व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार थी, जिसके कारण विदेशी अतिक्रमण आरंभ हुआ। इसकी तुलना में जापान स्वयं को एक ऐसे आदर्श एशियाई राष्ट्र का उदाहरण मानता था, जिसने अपने आधुनिकीकरण द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह पाश्चात्य साम्राज्यवादी गुट तथा साम्यवाद का सिर उठाकर मुकाबला कर सकता था। पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था की घोषणा करके जापान चीन के साथ साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद से टक्कर लेने के लिए अपनी शक्ति और अनुभव बांटना चाहता था, लेकिन चीनी इस तथ्य से काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि पूर्वी एशिया में जापान की अपनी खुद की गतिविधियां और कारनामे किसी पाश्चात्य शक्ति से कम नहीं थे। जापान का ताइवान, कोरिया और मंचूरिया पर कब्जा तथा उत्तरी चीन में स्वतंत्र राज्य कायम करने की उसकी कोशिशों से साफ प्रतीत होता था कि जापान एक विश्वसनीय सहयोगी नहीं बन सकता था। 1938 और 1940 के बीच चीन में जापानी सेनाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर युद्ध रेखा बहुत कम बदली और लंबे समय तक चलने वाले क्षतिजनक युद्ध की आशंका सही व्यक्त होती नजर आ रही थी, लेकिन विश्वव्यापी दशा बड़े नाटकीय ढंग से बदल रही थी। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। साल के अंत तक ब्रिटेन को युद्ध से बाहर करने के लिए जर्मनी द्वारा उस पर भी इंग्लिश चैनल पार करके आक्रमण करने की काफ़ी आशंका थी। जर्मन साम्राज्य अजय दिखाई पड़ रहा था, जिससे धुरी समर्थक विदेश मंत्री मत्सुओका जैसो की हिम्मत बढ़ी। उसने त्रिपक्षीय समझौते ट्रिपार्टाइट पैक्ट में जापान की संपूर्ण भागीदारी पर जोर दिया। इस समझौते के विरोध जो इस आधार पर किया जा रहा था कि जापान के ऐसा करने पर उसका मित्र शक्तियों से युद्ध हो जाएगा, पर भी काबू पा लिया था। समझौते पर सितंबर 1940 में हस्ताक्षर हुए। इसी समय जापान ने पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था का दायरा बढ़ाने की ठानी। अब विस्तारवादियों के भाषणों में अक्सर विशाल पूर्वी एशिया नामक शब्द समूह प्रयोग होने लगे। पृष्ठ संख्या 213। विशाल पूर्वी एशिया सह समृद्धि क्षेत्र। कुछ समय तक जापानी विस्तारवादी आंदोलन की एक शाखा जापान के दक्षिण की ओर आगमन पर जोर देती रही, ताकि भरपूर संपदा और युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण दक्षिणे पूर्वी एशिया की यूरोपीय संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। 1940 तक ऐसी आकांक्षाएं काफ़ी खतरनाक मानी जाती थी, क्योंकि ऐसे कार्य में उपनिवेशी मातृभूमियों फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन और शायद अमेरिका से युद्ध का सीधा खतरा था। लेकिन अब फ्रांस और नीदरलैंड हार चुके थे और बरतानियों की स्थिति भी नाजुक हो गई थी। अब दलील दी जाने लगी कि दक्षिणी अभियान के लिए उचित समय आ गया था। जापान ने सितंबर 1940 में सबसे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी हिंद चीन के उत्तरी भाग में अपनी सेनाएं तैनात करने, हवाई पट्टियों का प्रयोग करने तथा रसद ढोने के अधिकार की मांग की। फ्रांस के पास जापान की इन मांगों को मानने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। पहले ही अगस्त में मत्सुओका ने घोषणा कर दी कि नई व्यवस्था विशाल पूर्वी एशिया सहसमृद्धि क्षेत्र में बदल दी गई थी। उन्होंने घोषणा की कि नई व्यवस्था में शामिल देशों के अतिरिक्त विशाल पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन तथा डच पूर्वी द्वीप समूह भी शामिल होंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि फिलहाल पूर्वी द्वीप समूहों के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिसंबर 1941 में जापान का चीन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। पर्ल हार्बर के आक्रमण के बाद विश्व युद्ध के प्रशांत महासागरीय दौर को जापान ने पूर्वी एशियाई युद्ध का नाम दिया। वैसे तो सह समृद्धि क्षेत्र के कई रूप थे। आमतौर पर इसमें जापान, चीन, मांचुकुओ, सारा दक्षिण पूर्वी एशिया तथा प्रशांत महासागर के कई द्वीप शामिल माने जाते थे। लेकिन इसके कुछ अटकलपच्चू रूपों में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया जाता था। मई 1942 के करीब प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी की सरकार ने विशाल पूर्वी एशिया मंत्रालय स्थापित करने की योजना बनाई। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी टोक्यो और सह समृद्धि क्षेत्र के अन्य देशों तथा प्रदेशों के बीच तालमेल पैदा करना था। पेशेवर राजनयिकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें शक था कि तोजो इस कार्य में विदेश मंत्रालय को भागीदार नहीं बनाएगा। यह मंत्रालय 1 नवंबर 1943 को बनाया गया, लेकिन वास्तव में यह मंत्रालय अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया। टोक्यो में बहुत कम केंद्रित आदेश योजना तैयार हुई। सह समृद्धि क्षेत्र के विभिन्न भाग अलग अलग शासक विधि के द्वारा चलते रहे। उदाहरणतया हिंद चीन में लगभग युद्ध के आखिरी चरणों तक फ्रांसीसी अधिकारी ही कार्यभार संभालते रहे। डच द्वीप समूहों में सीधे सैन्य अधिकारी ही काम चलाते रहे। एक सेना टुकड़ी सुमात्रा और ब्रिटिश मलय को मिलाकर शासन संभाले हुए थी। जावा का शासन प्रबंध जापानी सेना की एक टुकड़ी ने संभाला। बोर्नियो, सेलबस तथा मोलुककाज सीधे शाही नौसेना के नियंत्रण में थे। चीन, बर्मा तथा फिलीपीन में जापान ने स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकारें कायम कर दी थी, लेकिन इन सभी शासकों की गतिविधियों पर टोक्यो से भेजे गए सलाहकार और स्थानीय सैनिक मुख्यालय पूरी नज़र रखते थे। नवंबर 1943 में सह समृद्धि क्षेत्र के 5 राष्ट्रों के नेता साम्राज्य डायट भवन, इंपेरियल डायट बिल्डिंग में विशाल पूर्वी एशिया सम्मेलन में एकत्रित हुए। सह समृद्धि के कार्यकाल में यही केवल एक बैठक हुई थी। टोक्यो में हुए इस सम्मेलन में निम्नलिखित नेताओं ने भाग लिया। क, वांग चिंग वेई, जो गणतंत्रीय चीन की पुनः गठित सरकार के उच्चाधिकारी थे। ख, चांग चुंग हुएई, जो मांचुकुओ के प्रधानमंत्री थे। ग, थाईलैंड के राजकुमार वान वायथायाकोन। होजे पचियानो लॉरेल, जो फिलीपीन गणतंत्र के राष्ट्रपति थे। ङ, बा माअ, जो अगस्त 1943 में स्वतंत्र हुए बर्मा के नेता थे। च, आजाद हिंद, स्वतंत्र भारत के नेता सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं हुआ। असल में यह आपसी एकता पश्चिमी साम्राज्यवाद का खंडन और भविष्य में उभरते विशाल पूर्वी एशिया पर भाषण देने का एक अवसर था। बामाअ ने सभी की ओर से बोलते हुए कहा कि सदियों से एशियाई इस बात को भूले गए कि एशिया स्वयं एक संपूर्ण संसार है। इस भूल के कारण एशिया निवासियों ने एशिया को खोकर उसकी भारी कीमत चुकाई, लेकिन अब जापान के कारण एशियाई अपने साझे भाईचारे की सच्चाई को समझने लगे हैं। फलस्वरूप अब वह एशियाइयों के लिए एशिया वापस लेकर ही रहेंगे। युद्ध की समाप्ति के कई वर्ष बाद बा माअ ने अपनी जीवन कथा में सह समृद्धि क्षेत्र की बुराइयों और अच्छाइयों पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने अपने नीति निर्माताओं का सह समृद्धि क्षेत्र के निवासियों के ऊपर जापानियों द्वारा बर्बर शोषण तथा जापानी सैनिकों के घमंडी और क्रूर वार्ताओं का खंडन किया है। उन्होंने यह भी माना है कि बर्मा के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार जापानियों के सह समृद्धि क्षेत्र के इरादों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन बा माअ ने यह भी मान लिया कि बर्मा के लोगों ने अक्सर यही देखा कि जापानी युद्ध लड़ने के लिए उनसे क्या लेते रहे, न कि यह कि उसके बदले में जापानियों से उन्हें क्या कुछ मिला। उन्होंने बड़ा भावुक होकर कहा कि बर्मा और सारा स्वतंत्र एशिया जापान का ऋणी है। जापान के उस कार्य को जिसके द्वारा उसने अनगिनत औपनिवेशिक लोगों को आज़ादी प्राप्त करने में मदद की, मिटाया नहीं जा सकता। प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की शानदार विजयों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कफन में पहली कील ठोंकी। युद्ध के दौरान जापान द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय सेनाओं ने एशिया के अधिकतर क्षेत्र में एक नए साहस और इच्छा को जन्म दिया। कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को उस समय मान्यता दी जब दूसरी एक भी युद्धरत शक्ति ने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता की एक बात तक नहीं सुनी। इतिहास की आखिरी निष्कर्ष में युद्ध काल के तनाव, क्रोध तथा विश्वासघात से अधिक जापान की यह देन अधिक देर तक जीवित रहेगी। तोजो सरकार एशियाई राष्ट्रवाद के महत्व को समझती थी। कम आर्थिक महत्व वाले क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के द्वारा सहयोग प्राप्त करके वहां शासन पर हो रहे व्यय में कमी की जा सकती थी। इससे भी अधिक एशियाई राष्ट्रवाद का प्रचार चियांग चियेसरा की चुंगछिंग सरकार से शांति प्रस्तावना, अंग्रेजों को भारत में परेशान करने तथा उपनिवेशवाद विरोधी अमेरिका और ब्रिटेन में फूट डालने के लिए भी किया गया। इस प्रकार वांग चिंगवेई के कठपुतली राज्य में जापान ने चीन में प्राप्त विशेष संधि अधिकार त्याग दिए और शांति कायम होने पर चीन से अपनी सेनाएं हटाने का भी वचन दे दिया। अंत में जापान ने फिलीपीन और बर्मा को भी स्वतंत्रता देने का वायदा कर लिया तथा जब मित्र शक्तियों ने जापान पर काबू पा लिया तब उसने इस वायदे को भी अपनी पसंद की सरकारें बनाकर पूरा कर लिया। जापान ने थाईलैंड की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया। अंत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जापान ने एशिया में यूरोपीय औपनिवेशिक आधिपत्य की जड़ों को काट दिया।